कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम पहला शमूएल नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस अध्ययन से आप आत्मिक लाभ अवश्य प्राप्त कर रहे होंगे। परमेश्वर से प्राप्त की गई आशीषों को हमसे बांटिए और लगातार प्रार्थना में रहकर सुनते रहिए सत्य वचन।
कदमों में तेरे आए मसीहा, कदमों में तेरे आए मसीहा, मिलता है जीवन जहां। कदमों में तेरे आए मसीहा, मिलता है जीवन जहां। छोड़ के तेरी चौखट को यीशु, जाऊं तो जाऊं कहां, जाऊं तो जाऊं कहां। कदमों में तेरे आए मसीहा, कदमों में तेरे आए मसीहा, मिलता है जीवन जहां। खून की बूंदों से तूने मसीहा मेरी कहानी लिखी है, खून की बूंदों से तूने मसीहा मेरी की जलती धूप से बचने को क्रूस से छाऊं कहां, क्रूस से छाऊं कहां। कदमों में तेरे आए मसीहा, कदमों में तेरे आए मसीहा, मिलता है जीवन जहां।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और आशा करता हूं कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं। मित्रों, मैं अपने नए श्रोताओं का स्वागत करता हूं जो पहली बार आज हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम बाइबल की पुस्तक उसके शमूएल नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि दाऊद जनमान्य मनुष्य हो गया था। योनातान उसे अपने प्राण के समान प्यार करता था, परंतु उसके पास उत्तम वस्त्र नहीं थे। अतः योनातान ने उसे वाचा बांधी और उसे अपना बागा पहनाया तथा अपनी तलवार, धनुष और कटिबंध भी उसे दे दिया। तब हम देखते हैं कि पलिश्तियों पर विजय हो वे लौट रहे थे तो स्त्रियों ने यह गीत गाते हुए उनका स्वागत किया। शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। उस दिन से शाऊल दाऊद को घात करने की ताक में लग गया और अंत में दाऊद को जान बचाने के लिए जंगल में भाग जाना पड़ा। परंतु योनातान दाऊद से प्रेम करता था, इसलिए उसने कदम कदम पर दाऊद का साथ देने का प्रण किया। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे देखेंगे, लेकिन इसके पूर्व आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर पिता से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे अत्यंत दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवादित हैं कि आप अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं। आज जब हम आपके वचन पर मनन चिंतन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ की परिपूर्णता प्रदान करें ताकि जब हम आपके वचन को सुनते हैं तो आपका वचन हमें से प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के जीवन में कार्य करने पाए। हमारी प्रार्थना उन प्रिय भाई बहनों के लिए भी है जो बीमार हैं, दुखी हैं और निराश हैं। पिता परमेश्वर, उन्हें अपनी शांति प्रदान करें, उनके जीवन से भी आप बातचीत करें ताकि वे इस बात को जान सकें कि आप वही परमेश्वर हैं जिसने दाऊद के जीवन की रक्षा की और वही परमेश्वर आज उनके जीवन में अपनी शांति प्रदान कर सकता है। हाँ प्रभु, इस समय हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना आपके इकलौते बेटे, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और शामुएल की पुस्तक, पहला शामुएल की पुस्तक 20 अध्याय उसके 4 पद को पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, योनातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरा जी चाहे वही मैं तेरे लिए करूँगा। मेरे मित्रों, योनातान दाऊद का सच्चा मित्र था। ऐसा मित्र पाना बड़े सौभाग्य की बात है। नीति वचन की पुस्तक 18 अध्याय उसके 24 पद में लिखा है, मित्रों को बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। भाई आपको मझधार में छोड़ सकता है, परंतु सच्चा मित्र ऐसा कभी नहीं करेगा। एक मित्र हमें कह गया है, वह है जो बुरे समय में साथ दे। मित्रता तभी सिद्ध होती है जब आप संकट में हो। दाऊद के संकट काल में योनातान ने उसे अपनी मित्रता का प्रमाण दिया। वह दाऊद की रक्षा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। हम पहला शामुएल की पुस्तक 20 अध्याय के 5 पद में पढ़ते हैं, दाऊद ने योनातान से कहा, सुन, कल नया चांद होगा और मुझे उचित है कि राजा के साथ बैठकर भोजन करूं, परंतु तू मुझे विदा कर और मैं परसों सांझ तक मैदान में छिपा रहूंगा। यहां पर दाऊद को भोज के लिए महल में होना अवश्य था, परंतु वह भयभीत था, अतः उसने योनातान से 3 दिन बाहर रहने की अनुमति मांगी। तब हम पहला शामुएल 20 अध्याय के 6 और 7 पद में पढ़ते हैं, यदि तेरा पिता मेरी कुछ चिंता करे तो कहना कि दाऊद ने अपने नगर बेतलेहम को शीघ्र जाने के लिए मुझसे विनती करके छुट्टी मांगी है, क्योंकि वहां उसके समस्त कुल के लिए वार्षिक यज्ञ है। यदि वह यूं कहे कि अच्छा, तब तो तेरे दास के लिए कुशल होगा, परंतु यदि उसका क्रोध बहुत भड़क उठे तो जान लेना कि उसने बुराई ठानी है। इस प्रकार दाऊद शाऊल की भावनाओं को परखना चाहता था। तब हम आगे देखते हैं पहला शामुएल 20 अध्याय के 9 से 17 पद में, योनातान ने कहा, ऐसी बात कभी न होगी। यदि मैं निश्चय जानता कि मेरे पिता ने तुझसे बुराई करनी ठानी है तो क्या मैं तुझको न बताता। दाऊद ने योनातान से कहा, यदि तेरा पिता तुझको कठोर उत्तर दे तो कौन मुझे बताएगा। योनातान ने दाऊद से कहा, चल हम मैदान को निकल जाएं, और वे दोनों मैदान की ओर चले गए। तब योनातान दाऊद से कहने लगा, इसराइल के परमेश्वर यहोवा की शपथ, जब मैं कल व परसों इस समय अपने पिता का भेद पाऊं, तब यदि दाऊद की भलाई देखूं तो क्या मैं उसी समय तेरे पास दूत भेजकर तुझे न बताऊंगा। यदि मेरे पिता का मन तेरी बुराई करने का हो और मैं तुझ पर यह प्रकट करके तुझे विदा न करूं कि तू कुशल के साथ चला जाए, तो यहोवा योनातान से ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे, और यहोवा तेरे साथ वैसा ही रहे जैसा वह मेरे पिता के साथ रहा, और न केवल जब तक मैं जीवित रहूं तब तक मुझ पर यहोवा किसी कृपा ऐसी करना कि मैं न मरूं, परंतु मेरे घराने पर से भी अपनी कृपा दृष्टि कभी ना हटाना। वरन जब यहोवा दाऊद के हर एक शत्रु को पृथ्वी पर से नाश कर चुकेगा तब भी ऐसा न करना। इस प्रकार योनातान ने दाऊद के घराने से यह कहकर वाचा बंधाई कि यहोवा दाऊद के शत्रुओं से पलटा ले, और योनातान दाऊद से प्रेम रखता था और उसने उसको फिर शपथ खिलाई क्योंकि वह उससे अपने प्राण के बराबर प्रेम रखता था। मेरे मित्रों, योनातान को विश्वास हो गया था कि उसका बहनोई दाऊद सिंहासन का उत्तराधिकारी है। अतः उसने दाऊद से निवेदन किया कि जब वह अपने राज्य में आए तब दाऊद के घराने के साथ उसका संबंध भुलाया न जाए। मित्र, इन दोनों ने एक ऐसी योजना बनाई कि उनका संपर्क बना रहे। योनातान गतिविधियों पर ध्यान रख रहा था कि दाऊद के साथ उसकी भेंट कब होगी, अतः उन्हें अत्यधिक सावधान रहना पड़ता था। इस कारण उन्होंने संकेत की भाषा चुनी। योनातान मैदान में तीर चलाएगा, उसके तीर चलाने पर किसी को संदेह नहीं होगा क्योंकि वह एक योद्धा था। यदि उसने दाऊद के पिछले के स्थान के पास तीर चलाया तो इसका अर्थ था दाऊद संकट में है और उसे भाग जाना चाहिए। यदि उसने दाऊद के निकट तीर चलाया तो इसका अर्थ था कि दाऊद को खतरा नहीं है, वह लौट सकता है। तीसरे दिन नातान अपना धनुष लेकर मैदान में गया। शाऊल समझ भी नहीं पाया कि उसका पुत्र दाऊद को संदेश देने गया है। समाचार अच्छा नहीं था। शाऊल ने प्रत्यक्ष रूप से दाऊद की हत्या करने की ठान ली थी। तीर उड़ता हुआ दाऊद के पार निकल गया। इसका अर्थ था कि दाऊद को भाग जाना चाहिए। योनातान ने अपने सेवक से कहा कि वह उसका धनुष और तीर लेकर शहर में लौट जाए। योनातान ने दाऊद से भेंट करके बातें की। तब क्या हुआ, आइए हम देखें। पहला शमूएल 20 अध्याय उसके 42 पद में, तब योनातान ने दाऊद से कहा, कुशल से चला जा, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे से यह कह के यहोवा के नाम की शपथ खाई है कि यहोवा मेरे और तेरे मध्य और मेरे और तेरे वंश के मध्य में सदा रहे। तब वह उठकर चला गया और योनातान नगर में गया। मित्रों, दाऊद की जान खतरे में थी और उसे अब भाग जाना था। रोचक बात तो यह थी कि उनकी वाचा, हम देखेंगे कि योनातान ने वाचा का अपना पक्ष निभाया। वह अपने जीवन के अंतिम क्षण तक दाऊद के साथ निष्ठावान एवं सच्चा बना रहा। दाऊद भी योनातान के वंशजों के साथ, योनातान और उसके वंशजों के साथ विश्वास योग्य बना रहा। फलिस्तियों से युद्ध करते हुए शाऊल और योनातान मारे गए और दाऊद सिंहासन पर बैठा। उसके लिए सबसे सुरक्षित मार्ग था कि वह शाऊल के परिवार के हर एक सदस्य को समाप्त कर दे, जिसमें यदि योनातान का पुत्र हो तो वह भी मार डाला जाए। सच तो यह है कि योनातान का एक पुत्र था जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। वह लंगड़ा था। शाऊल और योनातान की मृत्यु का समाचार सुनकर उनकी दासी ने उसे छिपा दिया था। दाऊद अपनी वाचा निभाएगा। दाऊद ने योनातान के पुत्र को खोजकर महल में रखा और अपने साथ खाना खिलाता था। क्यों? क्योंकि वह योनातान के साथ बांधी वाचा निभा रहा था। योनातान ने उस पर अति अनुग्रह दर्शाया था। मेरे मित्रों, हम आगे चलकर इस विषय में और अधिक चर्चा करेंगे। इस समय मैं इस कहानी के उत्कृष्ट अर्थ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। दाऊद ने योनातान के कारण मेपीबोशेत को दया दिखाई। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के कारण आप और मुझ पर दया प्रकट की। वह हमारा उद्धारकर्ता इसलिए नहीं कि हमने कुछ किया है या हम कुछ हैं, परंतु यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 16 पद में स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि उसका पुत्र हमारे लिए मरा, इसलिए परमेश्वर उसके कारण हमें अनुग्रह प्रदान करता है। मेरे प्रियो, दाऊद से बातें करने के बाद योनातान महल को लौट गया। मेरे विचार में वह एक अति दुखी मनुष्य था, क्योंकि उसका पिता उसके जिगरी दोस्त को मरवा देना चाहता था। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 20 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 21 से जारी रखेंगे। इसमें देखेंगे कि दाऊद की याचकों से भेंट। आइए हम पहला शमूएल 21 अध्याय उसके 1 पद को पढ़ें। और दाऊद नोब की अहीमेलेक याजक के पास आया और अहीमेलेक दाऊद से भेंट करने को थरथराता हुआ निकला और उससे पूछा, क्या कारण है कि तू अकेला है और तेरे साथ कोई नहीं? यहाँ पर शाऊल से भागकर दाऊद अकेला पड़ गया और निसंदेह उसके युवा साथी उसके साथ थे। वह अकेला यूं था कि उसके साथी शाऊल की सेना की वर्दी में नहीं थे। पहला शमूएल 21 अध्याय उसके 2-4 पद में आगे लिखा है, दाऊद ने अहीमेलेक याजक से कहा, राजा ने मुझे एक काम करने की आज्ञा देकर मुझसे कहा, जिस काम को मैं तुझे भेजता और जो आज्ञा मैं तुझे देता हूँ वह किसी पर प्रकट ना होने पाए, और मैंने जवानों को फलाने स्थान पर जाने को समझाया। अब तेरे हाथ में क्या है? 5 रोटी व जो कुछ मिले उसे मेरे हाथ में दे दे। याजक ने दाऊद से कहा, मेरे पास साधारण रोटी तो कुछ नहीं है, केवल पवित्र रोटी है। केवल इतना हो कि वे जवान स्त्रियों से अलग रहे हों। मेरे मित्रों, इन पदों पर विचार केवल यही है कि वहां जो रोटी थी वह भेंट की रोटी थी, और उन्हें केवल याजक ही एक निश्चित समय पर खा सकता था। सप्त के दिन ताजी रोटी रखते समय ही वह खाता था। हम पहला शामिल 21:5-6 में पढ़ते हैं, दाऊद ने याजक को उत्तर देकर उससे कहा, सच है कि हम 3 दिन से स्त्रियों से अलग हैं। फिर जब मैं निकल आया तब जो जवानों के वर्तन पवित्र थे, यद्यपि यात्रा साधारण है तो आज उनके वर्तन अवश्य ही पवित्र होंगे। तब याजक ने उसको पवित्र रोटी दी, क्योंकि दूसरी रोटी वहां न थी, केवल भेंट की रोटी थी जो यहोवा के सम्मुख से उठाई गई थी कि उसके उठा लेने के दिन गर्म रोटी रखी जाए। मित्रों, ध्यान दीजिए कि यद्यपि इसराइल का धर्म परमेश्वर के द्वारा स्थापित किया गया था और ये रोटियां धार्मिक उद्देश्य से वहां रखी जाती थी, वहां पर कुछ लोग भूखे थे और उन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं थी। यदि वे रोटियां भूखों के काम नहीं आती तो तुच्छ ही ठहरती। दाऊद यही कह रहा था। दाऊद और उसके साथियों को वे रोटियां देने में याजक व्यवस्था का उल्लंघन कर रहा था, परंतु व्यवस्था की आत्मा का नहीं। आपको स्मरण होगा कि फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह को चुनौती ही दी। उसके शिष्य सब्त के दिन खेत से गेहूं की बालियां तोड़ रहे थे और खा रहे थे। प्रत्युत्तर में यीशु ने दाऊद का यही उदाहरण दिया था, मार्कुस रचित सुसमाचार 2:23-28 में इसी का उल्लेख है। ऐसा हुआ कि वह सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले चलते हुए बाले तोड़ने लगे। तब फरीसियों ने उससे कहा, देख ये सब्त के दिन वह काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई और जब वह और उसके साथी भूखे हुए तब उसने क्या किया था? उसने कैसे अव्यातर महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई, जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी। तब उसने उनसे कहा, सप्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य सप्त के दिन के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र सप्त के दिन का भी स्वामी है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु के कहने का अर्थ था कि यदि दाऊद ऐसा काम कर सकता था और वह उचित ठहरा तो दाऊद से भी महान कोई है और वह ऐसा कर सकता है। दाऊद ने भेंट की रोटियां खाई क्योंकि उसे आवश्यकता थी। मसीह यीशु के कहने का अर्थ था कि मनुष्य की आवश्यकता सब संस्कारों और धार्मिक नियमों से बढ़कर है। हम पहला शमूएल 21:7 में पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी दिन वहां दोवग नाम शाऊल का एक कर्मचारी यहोवा के आगे रुका हुआ था। वह एदोमी और शाऊल के चरवाहों का मुखिया था। ध्यान दे, उस युग में भी एक यहूदा इस्करियोती था, उसका नाम दोवेक था। वह शाऊल के चरवाहों का मुखिया था और यहोवा के आगे रुका हुआ था। वह दाऊद और महायाजक के साथ छल करेगा। इस व्यक्ति के बारे में दाऊद ने भजन संहिता 52 में बहुत कुछ कहा है। वह एक एदोमी था। आइए हम आगे पढ़ें, पहला शमूएल 21:8। फिर दाऊद ने अहीमेलेक से पूछा, क्या यहाँ तेरे पास कोई भाला व तलवार नहीं है? क्योंकि मुझे राजा के काम की ऐसी जल्दी थी कि मैं न तो अपनी तलवार साथ लाया हूँ और न अपना कोई हथियार ही लाया। मेरे मित्रों, अब हम आगे देखते हैं और मैं आपका ध्यान इस अंतिम वाक्यांश की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इसे प्रायः गलत अर्थ में संदर्भित किया जाता है। मैंने लोगों से कहते हुए सुना है कि प्रभु के लिए कुछ काम अति शीघ्र करने की आवश्यकता होती है, राजा के काम में अति शीघ्रता की आवश्यकता होती है। मित्रों, पहले तो हम यह समझ लें कि दाऊद वास्तव में क्या कह रहा है। उसके पास तलवार और भाला नहीं है क्योंकि उसे शीघ्रता में निकलना पड़ा। दूसरी बात यह है कि शाऊल राजा के काम से नहीं निकला था। मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि राजा के काम में शीघ्रता की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या आपने परमेश्वर के कामों पर ध्यान नहीं दिया कि वह कैसे धीरज के साथ करता है? वह दाऊद के जीवन में भी ऐसे ही काम करेगा। दाऊद को पृथ्वी की गुफाओं में प्रशिक्षण और अध्ययन प्रदान किया जाएगा। परमेश्वर की विधि यही है कि वह कभी भी शीघ्रता नहीं करता है। मूसा शीघ्रता में था और इसराइल के वंशजों को मुक्ति दिलाना चाहता था, परंतु परमेश्वर ने 40 वर्ष धीरज धरा। और सच तो यह है कि उस स्थान पर या उस समय मूसा इस योग्य भी नहीं था, अतः परमेश्वर ने उसे जंगल में प्रशिक्षण दिया और 40 वर्ष के प्रशिक्षण के बाद वह उस काम के योग्य ठहरा। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्रूस के काम से पूर्व 33 वर्ष इस पृथ्वी पर भेजा और तैयार किया। अतः परमेश्वर के काम की विशेषता शीघ्रता नहीं, वह धीरज धरकर धीरे धीरे शनय शनय काम करता है। ओह, हम कैसे अधीर हो जाते हैं। कभी कभी मेरी पत्नी मुझसे कहती है कि मैं कैसे धीरज खो बैठता हूँ, अर्थात मैं धीरज नहीं रख पाता। कभी कभी यह सच भी है। मेरे मित्रों, कई बार हमारे जीवन में ऐसी बातें आती है और हम धीरज नहीं रख पाते हैं, परंतु प्रभु हमारे जीवन में प्रतीक्षा करने की बातों को सिखाता है। हम सबको यह सीखना है। दाऊद को भी यह सीखना पड़ा। परमेश्वर को अपने चुने हुओं को ऐसा ही प्रशिक्षण देना पड़ा है। परमेश्वर ने जिस मनुष्य को काम में लिया है उसे धीरज का पाठ अवश्य पढ़ाया है। परमेश्वर हर काम समय लगाकर करता है। यदि आपको उसकी कार्यविधि देखना है तो देखें कि वह एक हीरा तैयार करने में या बरगद के वृक्ष को कैसे बढ़ाता है, उसे देखने में अवश्य समय दें। मेरे मित्रों, परमेश्वर के काम में शीघ्रता की आवश्यकता नहीं है, यह परमेश्वर की रीति भी नहीं है। दाऊद का यह कथन सच नहीं था, वह राजा के काम पर नहीं था। अतः राजा के काम में शीघ्रता मसीही सेवा में नहीं होना चाहिए। हम पहला शाऊल 21 अध्याय उसके 9 पद में पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, याजक ने कहा, हाँ, पलिस्ती गोलियात जिसे तूने एला तराई में घात किया, उसकी तलवार कपड़े में लपेटी हुई एपोद के पीछे धरी है। यदि तू उसे लेना चाहे तो ले ले, उसे छोड़, और कोई यहाँ नहीं है। दाऊद बोला, उसके तुल्य कोई नहीं, वही मुझे दे दे। दाऊद अपनी युवावस्था में गोफन चलाने में दक्ष था, परंतु संभव है कि राजमहल में लंबे समय तक रहने के बाद उसे अपनी गोफन पर भरोसा न रहा हो। इस समय उसे तलवार की आवश्यकता थी और वह गोलियत की तलवार काम में लेगा, क्योंकि उस समय वही उपलब्ध थी। हम पहला शमूएल 21 अध्याय के 10 पद में पढ़ते हैं, तब दाऊद चला और उसी दिन शाऊल के डर के मारे भागकर गत के राजा अकीश के पास गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद शाऊल से यथासंभव दूर चला गया। वह अकीश के क्षेत्र में पहुंच तो गया, परंतु उसे वहां संकट का बोध हुआ। वे इसराइल के बैरी थे, अतः दाऊद को पागलपन का नाटक करना पड़ा। हम पहला शमूएल 21 अध्याय उसके 15 पद में पढ़ते हैं, क्या मेरे पास बावलों की कुछ घटी है कि तुम उसको मेरे सामने बावलापन करने के लिए लाए हो? क्या ऐसा जन मेरे भवन में आने पाएगा? मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद का नाटक सफल हुआ और राजा अकीश ने उस पर विश्वास कर लिया। अब दाऊद का संकट टल गया था। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद अपने जीवन की रक्षा के लिए पागलपन का नाटक करता है, क्योंकि उसे पता चल गया कि यहाँ राजा उसका शत्रु है, अर्थात इसराइलियों का शत्रु, वह उसे मार डालेगा। तब उसने बावलेपन का नाटक किया और जब उसे राजा के समक्ष लाया गया तो राजा ने उससे कहा कि क्या हमारे यहाँ बावलों का अर्थात पागलों की कमी है जो तुम उसे यहाँ लाए हो, और इस प्रकार से वह बच निकला। मेरे प्रिय मित्रों, हम देखते हैं कि परमेश्वर दाऊद को किस रीति से तैयार कर रहा है ताकि आने वाले समय में एक बड़े राज्य का वह संचालन कर सके। मेरे मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में नई बातों को सीखा है और आत्मिक आशीषें प्राप्त की है। योनातान और दाऊद की मित्रता को भी आपने देखा है। क्यों ना आज हम भी एक दूसरे के साथ ऐसे मित्र भाव रखें, परमेश्वर से प्रेम करें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से अच्छी संगति और प्रेम के लिए प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए, जिसके माध्यम से आज आपने हमें फिर से इस बात का स्मरण दिलाया है कि आप अपने बच्चों से, अपने चुने हुए लोगों से प्रेम करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। हाँ प्रभु, आपने योनातन और दाऊद के जीवन के प्रेम के द्वारा हमें इस बात का स्मरण दिलाया है कि हम भी एक दूसरे के साथ मित्रता का भाव अपने जानों को हथेली पर रखकर भी कर सकें, और ऐसा ही प्रेम आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर प्रकट किए, और इसी कारण आपने हमारे पापों को अपने बेटे यीशु मसीह में दे दिया और हमारे बदले मर गए, ताकि हम उनके मरने के द्वारा उस भयानक दर्द से, मृत्यु से बच जाएं और अनंत जीवन को प्राप्त कर लें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए कि एक एक के जीवन में आपका प्रेम आ जाए। प्रभु, आप उनके हृदय को नम्र करें। किसी के प्रति यदि कोई क्रोध है, ईर्ष्या है, जलन है, दुश्मनी है, आप उनके जीवन से निकाल दें, उनके जीवन में प्रेम दें, ताकि वे अपने शत्रु से भी प्रेम रख सकें। प्रभु, आप हम सबकी सहायता करें, क्योंकि हम जानते हैं कि हम मनुष्य हैं, हम दुर्बल और कमजोर हैं, हम अपने आप से ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन हम आपकी सहायता के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे बहुत सारे माता पिता भाई बहन जो इस समय अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं, आप उनकी सहायता करें, अपने आशीष उनके जीवन में उंडेल दें, ताकि वे इस बात को जान सकें कि आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं और आप उनका समाधान कर सकते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए। हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को उनकी जरूरतों के मुताबिक आप आशीष प्रदान करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।